धवला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नयेजिने नमियूं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमूं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना और ये 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर हम आगे 8 कल आप थे कि नहीं थे? थे हाँ, लेट आए थे। हाँ, देखो अब ये वेदना खंड अपना शुरू है। कब से है? तो 9वीं पुस्तक, 10वीं पुस्तक, 11वीं और ये 12वीं है। वेदना ने कर्म की बात यहाँ हो रही है। तो पहले तो 9वीं में तो वो कृति अनुयोग द्वार वगैरह देखा था हमने। उसके बाद वेदना नाम, वेदना निक्षेप यानी नाम विधान निक्षेप, नए विभाषणता और द्रव्य प्रमाण यानी उसमें संख्या देखी थी, कर्मों की संख्या देखी थी, ये प्रदेशों की अपेक्षा कहाँ उसका सत्व उत्कृष्ट होता है। उसके बाद हमने क्षेत्र और काल भी देखा था। अभी 11वीं पुस्तक में काल में तो स्थिति बंध देखना, स्थिति सत्व देखना, उसकी बात हमने देखी थी। अब यहाँ विषय चल रहा है वेदना भाव। वेदना भाव यानी वेदना का भाव। वेदना का भाव कर्म का क्या भाव होता है? उसका जो फलदान शक्ति जो हम अनुभागों में गिनेंगे उसको, तो इसको कहेंगे वेदना भाव, वेदना का भाव और उस वेदना के भाव का विधान। हाँ, आपका प्रश्न है शरीर में वेदना होती उसका भाव समझना क्या? नहीं, शरीर में वेदना होती है ना, जो पीड़ा का अनुभव होता है वो बात अलग है। और यहाँ कर्म की, कर्म का भाव हमने देखा, कर्म भाव, कर्मों में क्या भाव होता है? ये जीव को जो वेदना हुए ने उसका तो ज्ञान हुआ, वेदना हुए ने उसका ज्ञान हुआ, और यहाँ क्या हो रहा है? कर्म का भाव, कर्म में क्या शक्ति है? जैसे आम का क्या भाव है? क्या है? आम का भाव है उसका आम का मीठा रस। हमने आपको पूछा कि हाँ सोने का क्या भाव है?
कल नहीं थी ना इसलिए ऐसा हुआ।
कल तो बता, कल दोपहर में, कल संडे दोपहर में थी। हाँ, वो वही उदाहरण दिया था ना स्वामी जी के, मैंने इसे पूछा कि आम का भाव हम किस में, तो आम में कितना मीठा है क्या है, क्योंकि उसके गुण जो अभी कर्म का गुण क्या है, तो उसकी फलदान शक्ति है, कर्म कितना फल देता है, ज्ञानावरण की क्या फलदान, उस ज्ञानावरण का कार्य क्या है कहेंगे, तो कहते हुए ज्ञान की जो हीनता हो रही है वो गिनेंगे किस में, तो कर्म में भी कुछ भाव है ना, कि ऐसा निमित्त होने का भाव कर्म में पड़ा है। एक कर, जैसे हम कहें मिर्ची में तिखास है, तो हम देखते हो कोई मिर्ची ज्यादा तीखी होती है, कोई कम तीखी होती है, वो उसका अपना भाव है। जैसे पानी में हम कहेंगे वो डिग, ये भी हाँ गुण ही समझना, पर ये कर्मों में, कर्म किसके कहते हैं, हम जीव में क्या निमित्तपना हो रहा है, उसमें स्निग्धता कितनी है, रुक्षता कितनी है, उसका कलर क्या है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, उन भावों से कुछ मतलब नहीं है। कर्म का भाव जीव में क्या निमित्तपना बनता है, कर्म क्यों कह रहे उसको? कोई भी पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो कर्म कहने से उसमें क्या विशेषता है? तो जीव के क्या निमित्तपना बनता है वो उसकी विशेषता है, वो कर्म का भाव। वेदना यानी कर्म, तो वेदना का भाव यानी क्या? कर्म की जो शक्ति है। कौन सी शक्ति? जीव में निमित्त जो कुछ हो रहा है, हम कहेंगे इसमें निमित्त की अपेक्षा से हम कहेंगे जीव में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति, वो तो चारित्र मोहिनी में कहेंगे है? तो मिथ्यात्व की शक्ति वो तो दर्शन मोहिनी में कहेंगे। अब ज्ञानावरण में अपनी शक्ति, ज्ञान की जो हीनता हो रही है उसकी, ज्ञान की शक्ति वो किसमें नापेंगे? तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। वो वेदना का भाव है। वेदना शरीर के पीड़ा को यहाँ वेदना नहीं कहते, वेदना यहाँ कर्मों को कहा। तो वेदना भाव यानी वेदना का भाव, वेदना का भाव यानी कर्म का भाव, वो हमने सारे निक्षेप लगाए थे, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। उसमें से द्रव्य निक्षेप में हमने देखा था आगम और नोआगम। नोआगम में तीन भेद देखे थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त में दो भेद देखे थे, कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य। तो ये कर्म द्रव्य भाव यानी द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कर्म का जो भाव है उसी की यहाँ चर्चा चलेगी अपनी। तो ये विषय सब इसका ही है। तो अभी इसमें ये पूछ रहे हैं, उसमें तीन अनुयोग द्वार है। कौन से? पद निक्षेप। पद से क्या मतलब है? कि उत्कृष्ट है कि जघन्य, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य, सादी अनादि। आप कुछ कहना चाहते थे?
नहीं, बोलो। मैं ये कह रहा था कि ये जो शरीर की वेदना जो होती है, यानी शरीर की वेदना नहीं होती है, हमारे पैर में घुटने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, ये हमने शरीर के साथ एकत्व बुद्धि की है इसलिए तकलीफ मुझे हो रही, ऐसा हम मान रहे। ये जो कुछ पुद्गल है उस पुद्गल का हम कोई वेदन नहीं करते। अभी आम में जो मीठापन है वह भी आम का मीठापन हम कभी स्वाद नहीं ले सकते, लेकिन अपना राग है। और ऐसा होता है कि अरे आम कितना अच्छा है, हमने उसको सुधारा और खाया तो खट्टा लगा। तो वो तो खट्टा लगा तो हमने तो पहले सोचा था मीठा होगा, लेकिन सोचने के अनुसार वहाँ नहीं हो रहा है, खट्टापना का ज्ञान हो गया और वहाँ खट्टापना है, ये दोनों साइमल्टेनियसली है, तो हमने ऐसा माना कि हमने आम का स्वाद लिया। वैसे यहाँ शरीर का भी जो दुखावा है, वेदना जिसको आप कह रहे हैं, उसका भी हम वेदन नहीं करते। हम अपने एकत्व बुद्धि जो है, राग जो है, उस राग का वेदन है। और यहाँ ये जो वेदना यानी कर्म का भाव, अभी वो तो आपने समझाया, कर्म का भाव यानी अभी हमको अरे
कर्म की शक्ति जो फलदान शक्ति उसकी, अभी उसमें तीन अधिकार है, पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबोधत्व। पद से क्या मतलब है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य, सादि अनादि, वो तेरा जो भेद है, ध्रुव ध्रुव, फिर वो ओज और युग्म, ओम विशिष्ट, नो ओम नो विशिष्ट, ये सब जो भेद बताए हैं वो उसमें हमको लगाना है। तो ये जो प्रच्छा सूत्र अलग अलग उन्होंने तैयार किए थे, यहाँ तो उसके उत्तर में उन्होंने कैसे होती, उत्कृष्ट होती कि अनुत्कृष्ट वगैरह पूछा गया था, तो उसमें बताते उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है, अजघन्य किसके होती क्या, वो तो बाद में बताएंगे स्वामित्व में। ये तेरा में क्या नहीं होते, केवल एक एक नहीं होते कहा था, बाकी हाँ ओज नहीं होते, ओज यानी वो तो अनइवन नंबर में नहीं होता, इवन नंबर में होता, युग्म होता है, योग ओज नहीं होता, ये बात बताई थी। अब ये जो तेरा पूरे फलदान शक्ति एक एक कर्म परमाणु में नहीं लेना है, पूरा जो वहां पर पूरा स्थान जो कहेंगे अनुभाग का स्थान या अनुभाग बंध का स्थान, यानी उस पूरे जो एग्रीगेटिव उसका लेना है, तो एग्रीगेटिव वो तो सम संख्या में आता है, अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ वो तो अभी चूलिका में बताएंगे जाके लास्ट में। हाँ तब तक तो हमें तो ऐसा ही, वो स्पर्धकिंग की संख्या है, इसकी संख्या है, वो तो सब युग्म राशि, बस इतना हमको लेना है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये जो तेरह जो उन्होंने बताए थे उसमें से अभी अभी तो पहले थे तेरह के नाम बताए, तो उसमें बारह होते हैं यह बताया, अभी उसमें से एक एक पर अन्य अन्य एप्लीकेशन करेंगे। पहला नंबर था उत्कृष्ट है कि नहीं है, तो जो उत्कृष्ट वेदना है वो अनुत्कृष्ट हो सकती है क्या, जघन्य हो सकती है क्या, और जघन्य हो सकती है क्या, सभी 12 पूछेंगे उसके ऊपर, एक के ऊपर 12 प्रश्न पूछेंगे। तो उसमें जो है उसको कहेंगे इसके भंग इतने होते हैं। तो उत्कृष्ट क्या क्या हो सकता है, तो उत्कृष्ट तो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता, उत्कृष्ट जघन्य नहीं हो सकता, उत्कृष्ट को अजघन्य कह सकते हैं, तो वो अजघन्य है। इस तरह से हमने देखे थे, एक नंबर का सूत्र उत्कृष्ट पर लगाए थे, ने एक नंबर का सूत्र तो 13 प्रश्नों के उत्तर में बताया था क्या क्या होता है, और फिर वो एक नंबर के सूत्र में ओज नहीं होता, बाकी 12 होते इतना बता दे। 2 नंबर का सूत्र हमने उसको रोमन 2 आंकड़ा लिया था, देखो 5 नंबर के पेज पर पहला सूत्र में क्या 13 के क्या क्या है वो पूछा था, तो 12 होते हैं, ओज नहीं होता ये बताया। द्वितीय सूत्र में, द्वितीय पृच्छा सूत्र में अभी क्या कहेंगे, उत्कृष्ट अनुभाग वेदना जो है, अनुभाग वेदना कहो या अनुभाग की बात है ना, ज्ञानावरण की, तो क्या क्या हो सकती है, तो उसको अजघन्य हो सकती है वगैरह वगैरह हमने उस पर लगाए थे, तो वो 5 होते। फिर हमने तीसरा सूत्र देखा था अनुत्कृष्ट पर लगाना है, तो अनुत्कृष्ट में 10 भेद होते हैं ऐसा आया था। फिर चतुर्थ पृच्छा सूत्र जघन्य, वो जघन्य में भी 5 भंग होते हैं। उसके बाद हमने 5वां सूत्र देखा था, वो जघन्य क्या क्या हो सकती है, तो उसमें भी 10 भेद है, यानी अनुत्कृष्ट में और अजघन्य में 10-10 भेद हुए थे। फिर छठा सूत्र किसके, सादी के बारे में पूछा था, तो सादी में तो 11 भेद हुए थे, क्योंकि सादी जो है उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी, जघन्य भी, अजघन्य वगैरह वगैरह, अनादि, ध्रुव, अध्रुव सब लगाए थे उन्होंने। अब उसमें वो 11 भेद होते हैं। उसके बाद 7वां अभी हमको देखना है,
पढ़ा ना हमने कल,
नहीं 7वां भी नीचे से, ये 11 भेद होते वहां तक हमने पढ़े थे, अभी 7वां सूत्र हमको पढ़ना है। अब 7वें पृच्छा सूत्र की अपेक्षा करके यहाँ से अपना आज का विषय शुरू होता है। अर्थ की प्ररूपना की जाती है, वही इस प्रकार है, अभी तक हमने किस पर लगाए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य जघन्य और सादी पर लगाए थे, और ओरिजिनल एक वो 13 क्या क्या होता है वो बताया था, ये 6 हो गए थे, अभी 7वां सूत्र है। तो कहते कि सादी का हो गया था, अभी कहते वो इस प्रकार अनादि ज्ञानावरण वेदना, जो अनादि ज्ञानावरण वेदना है वो कैसी कैसी हो सकती है, तो कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है, कथंचित सादी है। अभी अनादि वाले को भी सादी कहा, हाँ वह सादी को भी अनादि कहा था, वैसे अनादि को भी सादी कहा, क्योंकि ज्ञानावरणीय के अनुभाग विशेष का आश्रय करके सादिता देखी जाती है, यानी पर्टिकुलर अनुभाग के लिए सादिता होगी, इन जनरल अनादिता है। अब कथनचित ध्रुव है, क्योंकि अनुभाग सामान्य का कभी विनाश नहीं होता, यानी अनुभाग हमेशा रहेगा ना, अनुभाग सामान्य ने हमेशा ही ज्ञानावरण में उसका अनुभाग तो होगा ही होगा। कथनचित अध्रुव है, अध्रुव की अपेक्षा अनुभाग विशेष के पर्टिकुलर अनुभाग का नाश हो जाता है, इसलिए उसको अध्रुव भी कहेंगे, यानी वही का वही अनुभाग हमेशा नहीं रहेगा। कथनचित युग्म है, तो युग्म की बात तो हमने पहले भी देखी थी। कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर अपेक्षा एक किसी अनुभाग की अपेक्षा से उसमें लगा सकते हैं। कथनचित नोम नो विशिष्ट है, इस प्रकार अनादि पद 11 भेद रूप है, जैसे सादी भी 11 रूप है, वैसे अनादि के भी 11 हमने भेद देखे।
हमने पहले युग्म ही ऐसा समझा था,
हाँ यहाँ पर भी युग्म बता रहे ना,
नहीं पर यहाँ पे कथनचित ओम है इसे भी बताया,
युग्म के अगेंस्ट ओज होता है, ओम नहीं।
ओ सॉरी, अच्छा
ओज को लिया ही नहीं यहाँ पर, आप ओज समझे है ना। देखिए अभी आठवें पृच्छा सूत्र का हम यहाँ आठ नंबर डालेंगे, आश्रय करके अर्थ प्ररूप ना करते, क्योंकि शादि अनादि के बाद अभी ध्रुव अध्रुव की बात करेंगे। वह इस प्रकार है, ध्रुव ज्ञानावरणीय भाव वेदना, अनुभाग वेदना भी कहते हैं, भाव वेदना भी कहते हैं, एक ही बात है। कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित वो तो बराबर करो, वो त्रु हो गया उसको खोड़ो, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है, कथंचित सादी है, कथंचित अनादि है, कथंचित अध्रुव, ध्रुव को भी कथंचित अध्रुव कहा, कथंचित यानी स्पेसिफिक विशिष्ट पद की अपेक्षा अध्रुव भी कह सकते उसको, युग्म है, कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है, कथंचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार ध्रुव पद 11 प्रकार का है, सादी भी अनादि भी ध्रुव भी 11 प्रकार के हुए, अब अध्रुव भी 11 प्रकार कहेंगे। देखो नौवा सूत्र भी, नौवे पृच्छा सूत्र का आश्रय कर अर्थ प्ररूप ना करते हुए इस प्रकार है, अध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना, कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, कथंचित जघन्य है, कथंचित अजघन्य है, कथंचित सादी है, कथंचित अनादि है, क्योंकि नाना जीवों में अनादि स्वरूप से अध्रुवता पाई जाती है।
इसका मालूम नहीं पड़ा, नाना जीवों में अनादि स्वरूप से
अध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना अनादि है, अनादि क्योंकि वो ध्रुव रूप, वो पर्टिकुलर अनुभाग ध्रुव नहीं है ना, इस अच्छा। तरह से उसको अध्रुव भी, अध्रुव जो है वो अनादि से है, अनेक जीवों की अपेक्षा बताते हैं। यानी देखो अपेक्षा हर जगह अलग अलग बताई है, इसलिए वो कथनचित शब्द लगाते, कभी पर्टिकुलर अनुभाग की बात करेंगे, कभी नाना जीवों की बात करेंगे, इस तरह से उसमें अपेक्षा लगती है, इसलिए उस कथनचित शब्द लगा रहे हैं। अब कहते अध्रुव भी कथनचित ध्रुव है, क्योंकि विशेष की विवक्षा न होने से अध्रुव अनुभाग की सामान्य रूप से ध्रुवता देखी जाती है, यानी अध्रुव अनुभाग हमेशा पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं अध्रुवता की, जैसे हम कहेंगे, हम उदाहरण देते हैं ना, पर्याय परिणामशीलता है यानी अनित्यता है, तो अनित्यता नित्य है कि अनित्य है? अनित्यता नित्य ही है, क्योंकि अनित्यता स्वभाव है और वो नित्य है। ऐसे यहाँ क्या कहते हैं, अध्रुवता सामान्य से अध्रुवता है, वो हमेशा है, ध्रुव है, अध्रुवता ध्रुव है, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में आई बात, ये अनित्यता अनित्य नहीं है, अनित्यता कायम है, क्योंकि हर समय परिणमन चल रहा है। ये तो उदाहरण के तौर पर दिया मैंने, यहाँ वो अनित्यता की बात नहीं है, यहाँ ध्रुव अध्रुव की बात है। आठ नंबर, कथंचित युग्म है, कथंचित ओम है, कथंचित विशिष्ट है, कथंचित नोम विशिष्ट है, क्योंकि जो 13 में से क्या है, एक तो ओज को निकाल ही दिया तो 12 रहे, तो 12 में से एक पर 11 भंग लग रहे, इसलिए सादी में भी 11, अनादि में भी, ध्रुव में अध्रुव में 11-11 लगे, और जघन्य और अनुत्कृष्ट में 10-10 लगे थे, और उत्कृष्ट और जघन्य में 5-5 लगे थे, है ना। अब दसवां पृच्छा सूत्र का अर्थ प्ररूपना करते हैं, वह इस प्रकार है, युग्म ज्ञानावरणीय भाव वेदना, कथंचित उत्कृष्ट है, कथंचित अनुत्कृष्ट है, ब्रैकेट नहीं है, रेगुलर है हमारा, ब्रैकेट निकाल दो, यहाँ ब्रैकेट का कोई काम नहीं। कथंचित जघन्य है, हाँ, किसके लिए ब्रैकेट, अनुत्कृष्ट के लिए, और अजघन्य के लिए भी डाला है क्या आगे?
नहीं,
हमारे में प्राकृत में कोई ब्रैकेट नहीं है। हाँ, ऊपर ना जुम्म नानावर्णीय भाव एणा सिया उपकसा सिया अनुपकसा सिया जड़ना सिया अजड़ना कथनचित जगन है, कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है, कथनचित ओम है, कथनचित विशिष्ट है और कथनचित नोम नो विशिष्ट है। इस प्रकार युग्म पद 11 विकल्प रूप है।
यहाँ पे इस युग्म के बाद में जो शादी बताया ना,
क्या क्या क्या
युग्म है वो कथनचित शादी है, वो कैसे घटित करेंगे?
पर्टिकुलर अनुभाग की अपेक्षा।
अच्छा, कोई एक अनुभाग?
हाँ, कोई विशेष की अपेक्षा। हमेशा कहते हैं ना वो अपेक्षा जुदी जुदी लगाते हैं, इसीलिए कथनचित शब्द लगा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे जब युग्म नहीं था फिर युग्म हुआ, ऐसा नहीं है। अन्य युग्म था वो अन्य युग्म हो गया। मान लेते ना पहले 12 था फिर 16 हो गया तो क्या कहेंगे? वो तो शादी हो जाएगा उसकी, है ना। अब 11वें पुच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं नहीं है, क्या कहा? क्योंकि 11वां कौन सा था? पहले 13 प्रश्न में ओज वाला, उसमें नहीं लगाएंगे, वो है ही नहीं तो उसमें क्या लगाएंगे भंग? क्योंकि अनुभाग में ओज संख्या संभव नहीं है। अनुभाग है ना पूर्ण, जैसे हमने योग स्थान में पूरा एक योग स्थान मिलकर होता है, उसमें भी वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानियां होती है योग स्थान में, परंतु योग स्थान पर्टिकुलर सभी पूर्ण जो अविभाग प्रतिच्छेदों का जो समूह पूरा होगा वर्ग वर्गणा स्पर्धक सब मिलकर, उसको हम योग स्थान कहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी अनुभाग में भी वही लगाना है, एक एक परमाणु का विभाग, फिर वर्गणा, नंबर ऑफ वर्गणाएं, नंबर ऑफ स्पर्धा, कितनी गुणहानियां, सब मिलकर जो एक पर्टिकुलर स्थान होगा तो वो युग्म राशि रूप होता है, ये उनका कहना है। नहीं तो एक एक, हाँ ये टोटल, क्योंकि पूरा मिलकर स्थान है ना, वो एक स्थान पूरा मिलकर है, इसीलिए उसमें ओज पद नहीं है। क्योंकि अगर एक एक वर्ग की अपेक्षा बताएंगे तो हमने मिनिमम अनुभाग वाला वर्ग है, फिर एक अनुभाग अधिक है अंश, तो उसमें तो एक से अधिक है नहीं, वो तो ऑड नंबर हो जाएगा, परंतु उसको नहीं लेना है। पूरे टोटल मिलकर जो एक एग्रीगेट जो स्थान है उसकी बात है। अब 11वां नहीं है तो 12वें पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी उसमें 12वां नंबर डाला है और 11वें के लिए 0 लिखा हमने, यानी वो 11 नंबर डाल के उसको, अभी 12वें पृच्छा सूत्र उसको 12 नंबर दे देना, 11वें तो है ही नहीं है। अब 12वें पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते वो इस प्रकार है, क्योंकि हमने पहले 13 पृच्छा सूत्र बनाए थे, वो 11वें के बारे में कोई सवाल ही नहीं, वो है ही नहीं है, वही इस प्रकार है। अब 12वां किसका नंबर है? ओज के, युग्म और योज निकल गए ना। अब ओम की बात है, ओम ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य। देखो ओम जो है जो उत्कृष्ट है और वो जघन्य, वो ना विशिष्ट है ना ओम है, क्योंकि वो तो एक ही पद है, तो उसमें ओम भी नहीं लगेंगे और विशिष्ट भी नहीं लगेंगे। तो कहते ओम ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य, यानी ओम ये पद अजघन्य और अनुत्कृष्ट में हो सकता है। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है। अभी सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा उसमें सादी अनादिपना उन्होंने ले लिया। कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है। इस प्रकार ओम पद 7 विकल्प रूप है। अब जो ओम है वो विशिष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ओम है ये तो बता दिया, और जो ओम है वो नोम नो विशिष्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए देखो वो ना उत्कृष्ट है ना जघन्य है, तो जो है वो दो पद लिए है ना, फिर सादी अनादि में दोनों लिए, ध्रुव ध्रुव में से दोनों लिए और युग्म लिया, फिर ओम विशिष्ट और नोम नो विशिष्ट में से, ओम तो ये स्वयं है, अन्य दो है ही नहीं है, 7 पद इसमें होते हैं। अब 13वां पृच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं, अभी विशिष्ट में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी सात पद ऐसे लगेंगे। तो विशिष्ट ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित अजघन्य है, क्योंकि विशिष्ट है वो भी उत्कृष्ट जघन्य नहीं हो सकता। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, उसमें भी सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा लगाकर घटित हो जाता है। कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पद सात विकल्प रूप है, यानी सात भंग होते हैं उसके साथ। अब चौदहवें पुच्छा सूत्र का अर्थ कहते हैं। मैंने पहला तो सबका मिलकर तेरा क्या है वो बताया और फिर एक एक के ऊपर बाकी एप्लीकेशन किए। तो चौदहवें पुच्छा सूत्र का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है। नोम नो विशिष्ट ज्ञानावरणीय भाव वेदना कथनचित उत्कृष्ट है, कथनचित अनुत्कृष्ट है, कथनचित जघन्य है, कथनचित अजघन्य है। ये दो एक्स्ट्रा हो गए इसमें, है ना। कथनचित सादी है, कथनचित अनादि है, कथनचित ध्रुव है, कथनचित अध्रुव है और कथनचित युग्म है। देखो ओम पे सात लगाए, विशिष्ट पर सात लगाए, पर नौ नौ विशिष्ट में नौ लगे। हाँ वो उत्कृष्ट और जघन्य को भी इंक्लूड कर दिया उसमें।
पे ये नौ नौ विशिष्ट पे कथनचित अनादि भी है कर लिया,
सब लगाएंगे।
अनादि कैसे लगेगा?
देखो सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा हम बता चुके हैं ना बहुत बार, ये बात बहुत बार बताए ना। एक नाना जीवों की अपेक्षा कभी लगाते हैं, कभी विशिष्ट पद की अपेक्षा लगाते हैं, कभी सामान्य की अपेक्षा लगाते हैं, इस तरह से। तो नोम नो विशिष्ट केवल अकेला उत्कृष्ट या जघन्य पर ही नहीं लगा, सब में लगते हैं। और ये तो अनादि और सादि दोनों सिद्ध होते ही है ना। सब सूत्रों के भंगों के अंकों की संदृष्टि, देखो पहले में 12 लगे थे क्योंकि उसमें ओज नहीं था, फिर उत्कृष्ट में 5, अनुत्कृष्ट में 10, जघन्य में 5, अजघन्य में 10, सादी और अनादि में 10-10, ध्रुव और 11-11, मुझे 11 कहना था, सादी अनादि में 11-11, ध्रुव अध्रुव में 11, और फिर उसमें किसको युग्म में लिया था ना, ये युग्म में 11 लिए थे, ओज में है ही नहीं है। फिर साथ साथ जो लिए थे वो ओम में और विशिष्ट में लिए थे, और नोम नो विशिष्ट में 9 लिए थे। अब इतने सारे भंगों की टोटल हो जाएगी। पेज नंबर 5 पर पहला सूत्र के पहला भंग, पहले सूत्र में 12 भंग बताए। ये मूल में पूछे गए थे, चौथा सूत्र जो है ना, ज्ञानावरणीय वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है, अजघन्य भी, तो क्या क्या है? तो क्या क्या है? तो ओज नहीं है, बाकी सब कुछ है। 13 प्रश्न में किसमें? 2 में। हाँ नहीं, पहले सूत्र में क्या है पूछा था, क्या क्या है? तो ओज नहीं है, बाकी सब है, यानी ज्ञानावरणीय वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है, अजघन्य किसका होते क्या होते वो बात अलग है, पर वो है कि नहीं है तो ये है, ये कहना चाहते। ओज नहीं है, 12 है। हाँ इसलिए पहले सूत्र में 12 लिए, फिर उत्कृष्ट और जघन्य में 5-5, अनुत्कृष्ट और जघन्य में 10-10 लिए, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव और युग्म में 11 लिए, ओज में है ही नहीं, और फिर बाकी हमने ओम और विशिष्ट में 7-7, नोम नो विशिष्ट में 9। देखो अभी इसके लिए गाथा है ऊपर, यहाँ 11 नंबर के पेज पर। 12 सपन 10 पंचेकार सय सत्त सत्तनव द्विहण यगहन लीना पुच्छा सुत्तंक सिठी। 12 5 10 5 10, 5 स्थानों में 11, पंच एकारस 7-7 7-7 और 9। इस प्रकार दोनों नयों की अपेक्षा यह पृच्छा सूत्रों के अंकों की संदृष्टि है। यानी कहीं सामान्य की मुख्यता, कहीं विशिष्ट की, ऐसे सब करके उन्होंने बता दिया कि इस कैसे हो जाती है। इसी का विशेषार्थ बता रहे हैं। वेदना भाव विधान का यह मुख्यतया तीन अधिकारों के द्वारा कथन किया गया है। हमने देखा ना पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबोध। विशेषार्थ श बरोबर करो, विषय पार्थ दिखता है वो, बीच में श बराबर लिख, नहीं ठीक है। हाँ, पुराने पुस्तकों में वे तीन अयोग द्वार ये हैं, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूतव। उत्कृष्ट आदि पदों के द्वारा वेदना भाव विधान के विचार का नाम पद मीमांसा। मीमांसा ने उसका स्पष्ट, उसका विचार, उसमें उवाहापोह चर्चा। तो कहते हैं कि उत्कृष्ट आदि पद, जो उत्कृष्ट आदि जो 13 पद में से जो 12 होते हैं उसकी बात। उत्कृष्ट आदि पदों के द्वारा वेदना भाव विधान, यानी उसका जो अनुभाग है ज्ञानावरणादि का, उसका अपना भाव कर्मों का, तो उसमें कौन कौन से पद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, फिर वो पदों के साथ कौन कौन से भंग बनते हैं कॉम्बिनेशन सुन के, वो भी बताए। यहाँ सूत्र में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, इन चार पदों का ही निर्देश किया। सूत्र में तो चार ही बताए, परंतु उसमें से उसको देशामर्शक कहकर उसमें से ये सारा अर्थ निकाला है। किंतु वीरसेन स्वामी ने इनसे सूचित होने वाले 9 पद और गिनाए हैं। उसमें तो चार बताए, ये 9 पद बताकर फिर उसमें से क्या होते हैं उसकी चर्चा की। ये कुल 13 पद है, उसमें भी इनमें से एक एक पद के आश्रय से शेष पदों का विचार करने पर कुल 169 पद होते हैं। यहाँ ज्ञानावरणीय भाव वेदना का विचार प्रस्तुत है। इस अपेक्षा से कुल संयोगी पद कितने होते हैं इसका कोष्ठक आगे देते हैं। ये उन्होंने टेबल बनाया। देखो हमने अभी ये सब देखा है, ऊपर के कॉलम में उन्होंने वो आड़ा जो लिखा है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य अजघन्य, सादि अनादि, ध्रुव अध्रुव, ओज लिखकर किसी में भी हर जगह वो नीचे उसके क्रॉस कर दिया। युग्म ओम विशिष्ट और नोम नो विशिष्ट। अभी उत्कृष्ट में कितने 5 ही देखे थे हमने, उत्कृष्ट वो अनुत्कृष्ट नहीं होता, जघन्य नहीं होता, जब क्या नहीं होता ये फुली कर दिया, और क्या होता है उसके लिए वो ऊपर से जो डिक्टो किया है उन्होंने, यानी उत्कृष्ट है वो अजघन्य होता है, सादी होता है, अध्रुव होता है, युग्म भी होता है और नोम नो विशिष्ट, ये 5 उसमें लगे, बाकी को क्रॉस कर दिया। अनुत्कृष्ट है हाँ, उत्कृष्ट नहीं हो सकता, अनुत्कृष्ट तो वो स्वयं है, परंतु वो अनुत्कृष्ट वो जघन्य हो सकता है, अजघन्य तो है ही है, सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी, अध्रुव भी है, युग्म भी है, ओम भी है, विशिष्ट भी है, नो, इस तरह से उसमें ये 11 लगे। ओम यानी वो तो उसमें, ओज यानी विषम, ये जो अभी हम सब देख रहे थे उसी का उन्होंने टेबल बनाया। युग्म यानी सम संख्या, और वो भी 4 से भाग जा सकता है इसी सम संख्या, उसमें भेद नहीं किया उन्होंने, पर उसमें कृत युग्म और बादर युग में ऐसे 2 राशि होते हैं। कुछ कहा आपने? हाँ, यहाँ ओज पद क्यों संभव नहीं है, इस बात का विचार टीका में किया ही है, तथा शेष पद प्रत्येक और संयोगी कैसे घटित होते हैं यह बात भी टीका में विस्तार से बतलाई है। संयोगी ने हमने तो एक उत्कृष्ट कौन कौन से हो सकते हैं उसका संयोगी कहा, और सिंगल सिंगल रखना तो उसको हमने प्रत्येक भंग कहा। अब 12 पृष्ठ पर आते हैं। एवं सत्तन्नम कम्माणम, उन्होंने ज्ञानावरणी पर घटित करके बताया है, तो कहते 7 कर्मों में ऐसा ही होगा। इसी प्रकार शेष 7 कर्मों के विषय में पद प्ररूपणा करनी चाहिए, यानी पदों को बताकर उसकी मीमांसा, कौन से होते हैं कौन से नहीं, तो जैसा अभी हमने देखा इसे सभी कर्मों में घटित होगा। सूत्र पढ़ा ना, एवं सत्तन्नम कम्माणम, उसका हिंदी भी पढ़ा। जिस प्रकार ज्ञानावरणीय के पदों की प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष 7 कर्मों के पदों की प्ररूपणा करनी चाहिए। कर्मों की वो बिंदी दिखती है क्या कर्मों में? इस प्रकार ओज अधिकार गर्भित पद मीमांसा नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ऊपर क्या होता है? सगन तो खित्त ओजा ही आरम समत्तम एवं पद मीमांसा ति अनुयोग द्वारम सगन तो खित्त ओजा ही आरम समत्तम ओज अधिकार गर्भित पद मीमांसा नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ।
ये ओज क्यों लिखा है?
ओज नहीं होता वो भी बताया ना उन्होंने, नहीं होता ये भी बता दिया ना उसको, वो पद लेकर उसकी भी मीमांसा की कि वो नहीं होता मुख्यता नहीं, उसको भी इंक्लूड कर दिया है, वो होता है कि नहीं होता ये बताया इतना। क्या क्या कहाँ लिखा है? हाँ अच्छा अच्छा ओम का अर्थ होता है वो घटकर जो अनुभाग होता है उसका हानि होकर, वो ओम कहते हैं। विशिष्ट यानी बढ़कर जो होता है उसको, जैसे अनुत्कृष्ट और जघन्य में क्या घटता है, पर्टिकुलर अनुत्कृष्ट था अजघन्य में या अनुत्कृष्ट, पर्टिकुलर अजघन्य में से दूसरा अजघन्य हुआ, बढ़कर हुआ तो उसको हम विशिष्ट कहेंगे, घटकर होगा तो उसको हम कहेंगे ओम कहेंगे। ओम हानि वृद्धि, यानी पहले भी अनुत्कृष्ट था और ये अभी भी अनुत्कृष्ट हुआ परंतु हानि होकर हुआ तो उसको ओम कहेंगे, बढ़कर हुआ तो उसको विशिष्ट कहेंगे। जो उत्कृष्ट और जघन्य है वो उसमें एक ही सिंगल पद है, जैसे अनुत्कृष्टों के अनेक भेद है तो उसमें हानि से भी अनुत्कृष्ट होता है वो संभव है, उत्कृष्ट और जघन्य में ये नहीं होता। और नोम नो विशिष्ट तो अनुत्कृष्ट और अजघन्य में भी पर्टिकुलर की अपेक्षा लगाए, वही था और वो भी वही रहा, अनुभाग दूसरे समय भी उतना ही रहा तो उसको नोम नो विशिष्ट कहेंगे, यानी वो किस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा वहां लगाना चाहिए। अब 12 नंबर पेज पर अभी हम ये पद मीमांसा अधिकार इतना ही है। देखो ये हमने ऐसे ही 13 पद वगैरह हमने किस में लगाए थे, द्रव्य में, नंबर ऑफ परमाणु में लगाए थे आपको याद होगा तो, अब यहाँ उसके अनुभाग में लगा रहे। स्वामित्व दो प्रकार का है, ये ऊपर पढ़ना, सामित्तम दुविहम जघन्य पदे उपकस्स पदे। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य पद विषयक और उत्कृष्ट पद विषयक। क्या कहना चाहते हैं? पहले बताया पद मीमांसा, तो कौन से पद होते हैं उसकी चर्चा की। अब ये पद किसके होते हैं, अभी जो जो पद बताए हैं उसका स्वामित्व भी बताना चाहिए, तो उसमें जघन्य पद विषयक और उत्कृष्ट पद विषयक बताएंगे, दो एक्सट्रीम्स को बताएंगे, बाकी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर पद शब्द का अर्थ स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वो पद जो हमने अनुभाग का जो पद बताया उत्कृष्ट पद है ना, उत्कृष्ट अनुभाग का स्थान हमने बताया ना, पूरे स्थान मिलकर उसके अनुभागों की चर्चा है, एक एक कर्म परमाणु में कितना होता है, एक एक वर्गणा में कितना होता है उसकी चर्चा नहीं है। तो पद शब्द का अर्थ स्थान समझना चाहिए। एक स्वामित्व जघन्य पद में होता है, यानी जघन्य अनुभाग स्थान है, उसका स्वामी कौन है तो उसको जघन्य, और दूसरा स्वामित्व उत्कृष्ट पद में होता है। इस तरह स्वामित्व दो प्रकार का होता है। शंकाकार पूछते हैं, अजघन्य और अनुत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व के साथ स्वामित्व चार प्रकार का क्यों नहीं कहा? पद चार बताए तो वही ये भी स्वामित्व चार प्रकार का बताओ, समाधान नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। यथा अब ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट जघन्य की बात करेंगे। उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकार का है, हमेशा पहले जघन्य पद और उत्कृष्ट पद होते, फिर उत्कृष्ट की बात पहले बताएंगे। उत्कृष्ट अनुभाग स्थान कहाँ होता है तो उसमें भी दो प्रकार बताएंगे, ओग उत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट। वो उत्कृष्ट यानी वो इन जनरल उत्कृष्ट किसके होता है, आदेश यानी कौन सी मार्गणा में उत्कृष्ट किसको होता है उसको आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। उनमें से समस्त विकल्पों का संग्रह करने वाला ओग उत्कृष्ट स्वामित्व है। समस्त विकल्प जो कोई अन्य सभी में मिलकर जो कोई उत्कृष्ट है बिना उसके भेद किए, सब भेद उसी में से गर्भित है, तो कहते हैं उसको ओग उत्कृष्ट कहेंगे। और विवक्षित विकल्प से अधिक आदेश उत्कृष्ट स्वामित्व है, यानी विवक्षित विकल्प विवक्षित भेद की अपेक्षा पूछेंगे इनमें से किसको उत्कृष्ट होता है तो उसको कहेंगे आदेश उत्कृष्ट। ये ओग और आदेश शब्द बहुत बार आए हैं अपने लिए। अनुत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट इन दोनों का एक अर्थ है, इसी कारण उत्कृष्ट ऐसा ग्रहण करने पर इन दोनों उत्कृष्टों का ग्रहण हो जाता है। आदेश उत्कृष्ट ने पर्टिकुलर भेद की अपेक्षा उत्कृष्ट बताया, परंतु उत्कृष्ट कहने से वो सब उसके अंदर इंक्लूड हो गए। जघन्य भी दो प्रकार का है। ये पहले मैंने उत्कृष्ट किसको कहना, जघन्य किसको कहना, स्वामी तो वो बताए, वो किसके होता है वो बाद में बताएंगे। तो जघन्य भी दो प्रकार का है, ओग जघन्य और आदेश जघन्य। ये इन्वर्टेड उसमें कैसे डालना, जघन्य से नहीं चलना जाए। ओग जघन्य के लिए एक इन्वर्टेड में पूरा करो, ओग जघन्य में एक बार करो और आदेश जघन्य उसमें मिलकर एक इन्वर्टेड करो। ये इन्वर्टेड गलत जगह लगा है। देखो अलग अलग नहीं, उन्होंने क्या किया है बीच में उसको इन्वर्टेड डाला है, पर इन्वर्टेड ओग के बाद जघन्य को डाला है। वो ऐसा पढ़ना है, जघन्य दो प्रकार का है। कैसे दो प्रकार होते हैं?
ओग जघन्य और आदेश जघन्य।
हाँ, ओग जघन्य और आदेश जघन्य। ऊपर भी ऐसा था ना, ओग उत्कृष्ट आदेश उत्कृष्ट, वहाँ कोई इन्वर्टेड डाला नहीं था, पर यहाँ तो गलत जगह ही डाल दिया है। इन्वर्टेड डालो ही मत तो भी चलेगा। हाँ, इसमें कहना है ओग जघन्य एक शब्द, यानी एक शब्द है, भले वो अलग लिखो पर पढ़ेंगे, और आदेश जघन्य। आदेश और जघन्य के बीच में जो इन्वर्टेड डाला है वो नहीं चाहिए। जिसके नीचे और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता वह ओग जघन्य स्वामित्व है। ध नहीं चाहिए, घ चाहिए। तथा विवक्षित विकल्प से एक विकल्प आदि से हीन आदेश जघन्य स्वामित्व है। अच्छा, ये मार्गणा में नहीं बता रहे। देखो देखो क्या कहना चाहते हैं, ओग उत्कृष्ट यानी टोटली उत्कृष्ट, और वो किसी एक पर्टिकुलर बीच वाला कोई अनुत्कृष्ट का भेद है उससे जो अधिक होगा हाँ उसके उससे अधिक है वो आदेश उत्कृष्ट हुआ। फिर से ओग उत्कृष्ट एंड टोटली उत्कृष्ट और रिलेटिव उत्कृष्ट उसको आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। मैं मार्गणा में समझी, यहाँ वो अर्थ नहीं निकल रहा है।
नहीं, रिलेटिव उत्कृष्ट
हम कहेंगे यह ऊंची है, हाइट वाली है, यह लंबी है, तो लंबी है तो सब में लंबे उसको लंबी कहेंगे, और उससे वो लंबी है वो क्या होगा, अपेक्षित लंबाई है उसको आदेश कहा। रिलेटिव नहीं, अपेक्षित, किसी की अपेक्षा। यहाँ लिखा ना, फिर मैं पढ़ती हूँ। देखो, मुझे लगा हमेशा हम ओग और आदेश इन जनरल और मार्गणाओं में बता रहे थे, ऐसा नहीं ले रहे। यहाँ का अर्थ मैं फिर जानना चाहती हूँ। देखो फिर से ऊपर उत्कृष्ट की बात करेंगे। समस्त विकल्पों का संग्रह करने वाला ओग उत्कृष्ट स्वामित्व, यानी सब में उत्कृष्ट वो ओग उत्कृष्ट। हाँ, वो सबसे समस्त विकल्पों का संग्रह, उसमें जो सभी जो अनुभाग स्थानों की अपेक्षा उत्कृष्ट है, इन मैक्सिमम जो है यानी सबसे उत्कृष्ट। अब विवक्षित विकल्प से अधिक यानी वो क्या है, रिलेटिव है ना, अपेक्षित यानी किसी किसी विशिष्ट से अधिक
अपेक्षित,
वो आदेश उत्कृष्ट है। हम कहेंगे ना टोटली उत्कृष्ट हम 100 मानेंगे और 50 से 60 जो उत्कृष्ट है, 50 और 60 के बीच में 60 उत्कृष्ट है, उसको आदेश उत्कृष्ट कहेंगे। इस तरह से उसका अर्थ समझना। जघन्य में भी वही लेना, ओग जघन्य और आदेश जघन्य, कि जिसके नीचे और कोई दूसरा विकल्प नहीं वो ओग जघन्य मिनिमम पॉसिबल, यानी सबसे जघन्य। अब विवक्षित विकल्प से एक विकल्प आदि से हीन, अभी जब हम कहते मिनिमम, हम मान लेते कि मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 100 माना, तो 5 ये सब क्या हुआ, कौन सा ओग जघन्य। अब कहेंगे विवक्षित विकल्प से एक विकल्प आदि से हीन, अभी हम कोई भी ले लो, ऊपर नहीं लेना, अभी कम लेना, अभी 20 से 19 एक विकल्प से हीन है, 20 से 15 अभी इतने विकल्प से हीन है, 5 विकल्प, ये सब उसको वो विवक्षित है, नहीं रिलेटिव, दो में कंपैरेटिव है ना, हाँ, एक विकल्प से दूसरा विकल्प कम है उसको आदेश जघन्य कहेंगे। उनमें से जघन्य पद ऐसा कहने पर इन दोनों ही जघन्यों का ग्रहण करना चाहिए। जब जघन्य पद कहेंगे तो उसमें टोटली जघन्य और आदेश जघन्य दोनों इंक्लूड हो गए, तो उनकी चर्चा यहाँ करेंगे। ये इतनी चर्चा क्यों की, उन्होंने पूछा था और जघन्य और अनुत्कृष्ट क्यों नहीं कहा, तो बाकी जो विकल्प है वो उसमें आदेश जघन्य आदेश उत्कृष्ट में आ जाते, ये उनका कहना है। इसलिए स्वामित्व दो प्रकार का ही, चार प्रकार का नहीं। इसलिए जहां जहां स्वामित्व दो प्रकार का कहा गया है या कहा जाएगा, वहां वहां इसी प्रकार दो भेदों का समर्थन करना चाहिए, यानी उसे में ये इंक्लूडेड है। अब 13 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। सामित्ते न उक्कस्य पदे नाना वर्णीय वेयणा भावदो उक्कस्या कस्य। अभी वहां जघन्य पद और उत्कृष्ट पद किसको कहना वो बताए, वो किसके होती है, अब ये पूछ के बताएंगे। स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट पद में भाव से ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना किसके होती है, यानी ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट अनुभव किसको होता है, ये उनको पूछना है। शंका सामित्तेन इस प्रकार यहाँ तृतीय विभक्ति कैसे संभव है, यानी स्वामित्व से ऐसा क्यों कहा, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि लक्षण में भी तृतीय विभक्ति का विधान किया जाता है। लक्षण बताने के लिए ऐसा कह सकते हैं, यानी स्वामित्व से वो किसके होती है, इस तरह। सूत्र में उत्कृष्ट पद के निर्देश द्वारा, उत्कृष्ट पद पूछा ना, जघन्य पद का प्रतिषेध किया है, यानी यह उत्कृष्ट की बात बताने वाले हैं, यह पूछी जा रही है। शेष कर्मों का प्रतिषेध करने के लिए ज्ञानावरणीय पद का निर्देश किया गया है, यानी सूत्र का एक एक शब्द क्यों लिया उसकी चर्चा है। भाव पद के निर्देश का फल द्रव्यादि का प्रतिषेध करना है। अश्विन भाई इसका अर्थ क्या है,
फलदान शक्ति की अपेक्षा,
हाँ द्रव्य ने
परमाणु की संख्या नहीं ले रहे,
द्रव्य ने संख्या, हमने पहले वेदना द्रव्य विधान देखा था, उसमें नंबर ऑफ परमाणु जिसको हम प्रदेश बंध प्रदेश सत्ता कहते, द्रव्यार्थिक नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल जो हम देख के आए, द्रव्य विधान क्षेत्र विधान काल विधान वो सब, यानी अन्य कोई विधान नहीं है। यहाँ पर किसकी बात है, अनुभव की बात है, भाव की बात है। દ્રવ્યાદિ કહીને દ્રવ્યની સંખ્યા, ક્ષેત્ર, કાલ, જો અભી હમ દેખ કે આયે ના દસવી ગ્યારવી પુસ્તક મેં વહી બાત હૈ. તો યહાં ભાવ કી બાત પૂછેંગે, ક્યોંકિ ભાવ સે પૂછા ના, ભાવ સે કિસકે, ભાવની અનુભવ કી બાત હૈ, કિસકે હોતી હૈ એસા કહેને પર, ક્યા નારકી કે, તિર્યંચ કે, મનુષ્ય કે, દેવ કે, જરા પડના આગે. ये पैराग्राफ पढ़ो,
सेकंड लाइन से पढ़ते हैं. भाव पद के निर्देश का फल द्रव्यादि का प्रतिषेध करना है. किसके होती है ऐसा कहने पर क्या नारकी के, तिर्यंच के, मनुष्य के, देव के, एकेंद्रिय के, द्विइंद्रिय के, त्रिइंद्रिय के अथवा चतुरिंद्रिय के होती है, ऐसी पृच्छा अथवा आशंका प्रकट की है.
हाँ, यानी वो किसके होती है जो स्वामित्व पूछ रहे हैं, तो किसमें में क्या समझना, चार गतियों की अपेक्षा, इंद्रिय की अपेक्षा जो उसमें विभाग है, तो उसमें से किसके होती है ये पूछा गया है. अभी उसका उत्तर यहाँ बताएंगे. आठ में उत्कृष्ट पूछा गया है, अन्यतर पंचेंद्रिय, सॉरी ऊपर, अन्न दरेण पंचेन्द्रियण सन्निमिच्छा इठिना सौवाही पज्जत्ति ही पज्जत्तगदेन सागार वजोगेन सागारेण नियमा जागारेण सागारेण सागार उपयोजोगेन जागारेण यानी जागृत के नियमा उक्कस संकिलिठेन बंधल्लयम जस तम संतकम्म मत्थी. इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं. अन्यतर पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त साकार उपयोग युक्त जागृत, वो गुरु बराबर लिखना जागृत, जागृत हुआ है वो ब्रह्मा, वो जागृत बराबर लिखो जागृत, और नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त. देखो जहां संकलेश अधिक है और ज्ञानावरणी कैसी है, तो अशुभ प्रकृति है, इसलिए उत्कृष्ट संकलेश में उत्कृष्ट अनुभाग बांधेंगे. तो उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त जिस जीव के द्वारा बंध होता है और जिस जीव के इसका सत्व होता है, यानी जब मैक्सिमम अनुभाग बांध रहा है उस समय उसका मैक्सिमम अनुभाग है. वो मैक्सिमम अनुभाग कौन बांधता है ज्ञानावरण का, तो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट संकलेश वाला वो पर्याप्त है, वो सब जो कंडीशंस बताए उसके वो ज्ञानावरणी के जो अनुभाग है वो उत्कृष्ट होगा. बंध कर रहा है उसी समय उसका सत्व उत्कृष्ट, इतना बता रहे. अभी इसकी एक एक शब्द की वो चर्चा करेंगे. यह सूत्र उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाले जीव का लक्षण बतलाता है. विकलेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग को नहीं बांधते हैं किंतु पंचेंद्रिय ही बांधते हैं. बांधने वाले कौन है, पंचेंद्रिय है, उत्कृष्ट संकलेश वाले. इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में पंचेंद्रिय पद का निर्देश किया है. जैसे हमने वो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले भी संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, वो सब बातें देखी थी वहां पर. अशुभ का अनुभाग भी उत्कृष्ट में यही लेना है, अशुभ का. अभी अशुभ में हमको प्रकृति कौन सी है वो पहले बराबर नक्की करना है. वहां कैसे था सब में लगा लिया इन जनरल. अभी यहाँ पर अशुभ कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग ये कंडीशन के साथ बंधेगा. ख्याल में आती बात, क्योंकि हम पूछेंगे वेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है, तो आपको सोचना पड़े साता का पूछ रहे कि असाता का. तो उसमें भी असाता का उत्कृष्ट हो सकता है कि साता का उत्कृष्ट हो सकता है, तो साता का होगा ना. वो तो जब जहाँ बंद उसका अनुभाग का बंद कहाँ तक होता है, दसवें के अंत तक होता है. इस तरह से हमें सोचना है. अभी हम इसको ही पढ़ेंगे. देखो यह सूत्र उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाले जीव का लक्षण बतलाता है. विकलेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग को नहीं बांधते हैं. विकलेंद्रिय ने वो एकेंद्रिय सहित असंगी तक सबको लिया एक साथ, किंतु पंचेंद्रिय ही बांधते हैं. इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में पंचेंद्रिय पद का निर्देश किया है। दे के ऊपर बिंदी दिख रही मुझे, निर्देश। अब कहते हैं परंतु उसमें ऐसा नहीं बताया कि वो तो बड़ी अवगाहना वाला महामत्स्य उत्कृष्ट बांधता है, या वो तंदुल मत्स्य उत्कृष्ट बांधता है, या मनुष्य बांधता है, नारकी बांधता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। केवल पंचेंद्रिय लिखा है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पर्याप्त। तो कहते वेद यानी स्त्री वेदी है कि पुरुष वेदी है कि नपुसक वेदी है, उससे कुछ मतलब नहीं। अवगाहना छोटी अवगाहना वाला है कि बड़ी अवगाहना वाला है, एवं गति मनुष्य है, तिर्यंच है, नारकी है कि देव है क्या, ये कुछ नहीं बताया। आदि की विशेषता का अभाव बतलाने के लिए, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अन्यतर पद दिया है, अन्यतर लिए ना, अन्यतर नहीं उसमें से कोई भी। असंगी का प्रतिषेध करने के लिए संगी पद का निर्देश किया है। आप कहेंगे पंचेंद्रिय बांधते हैं तो असंगी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने कहा कि पंचेंद्रिय वो जो तिर्यंच पंचेंद्रिय करोड़ पूर्व की आयु बांधते हैं तो असंगी भी बांध सकते थे, परंतु यहाँ यह अनुभाग में तो ये नहीं लेना, संगी को ही लेना है। संगी पद का निर्देश किया गया है। अब कहते हैं सासादन आदि का प्रतिषेध करने के लिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि शब्द डाला है ने, मिथ्या तो गुणस्थान वाला डाला है, क्योंकि ऊपर के जो गुणस्थान वाले हैं तो वो तो इतना उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बांधेंगे। जैसे हमने देखे थे मिथ्यात्व में ही वो तो उत्कृष्ट स्थिति का बंध है, ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी वगैरह वगैरह, पर सम्य दर्शन होने के बाद अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। ऐसे ही सम्य दर्शन होने पर वो इतना उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बंधेगा अभी उसके। मिथ्या दृष्टि पद का ग्रहण किया गया। अपर्याप्त काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता, किंतु पर्याप्त काल में ही उसका बंध होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश पर्याप्तों के होगा, अपर्याप्तों के नहीं होगा, ये कहना है। देखो सासादन आदि का प्रतिषेध करने के लिए मिथ्या दृष्टि पद का ग्रहण किया गया है, यानी मिथ्या दृष्टि को ही इतना उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा। सासादन दूसरा तीसरा चौथा वगैरह गुणस्थानों में ऐसा अनुभाग नहीं बंधेगा, ये कहना चाहते, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव तो ऊपर के गुणस्थानों में है ना, सर्वत्र सारे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, परंतु उसमें से कौन लेना, तो मिथ्या तो गुणस्थान वाला लेना, इसे मिथ्या दृष्टि कहा। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम है, जैसे हम पहले गुणस्थान का नाम मिथ्या तो भी कहते, मिथ्या दृष्टि भी कहते। अब अपर्याप्त काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंधन नहीं होता, किंतु पर्याप्त काल में ही उसका बंध होता है, यानी संकलेश हो या विशुद्धि हो। अभी तो हम ये ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पर्याप्त होगा, जब हम शुभ कर्मों की बात करेंगे उसमें भी पर्याप्त को ही लेंगे। इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त ऐसा कहा है। सब पर्याप्तियां ली, छह पर्याप्तियों के बाद ही उसको लेना है, क्योंकि ऐसे तो हम दूसरी पर्याप्ति होने के बाद उसको पर्याप्त कह भी देते हैं, जो निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त कहने का प्रघात है, परंतु यहाँ इसलिए सब पर्याप्तियां डाले शब्द। अब फिर साकार अनु उपयोग वाला लिया था, तो दर्शनोपयोग के काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता, हम देखा था इसको कहे अनाकार उपयोग कहते, ना अति संकलेश हो सकते ना अति विशुद्धि, मध्यम परिणाम होते हैं। हमने उसमें भी देखा था साता और असाता के बंधक में ज्ञानावरण के, क्या देखा था, कौन से स्थान का बंध करते हैं अनाकार, द्विस्थानक, साता का भी और असाता का भी, ये बंध की बात थी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी अनुभाग की बात है, दर्शनोपयोग के काल में उत्कृष्ट अनुभाग का बंधन नहीं होता, किंतु ज्ञानोपयोग के काल में ही होता है। अभी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट यानी संकलेश परिणाम भी पर्याप्त और ज्ञानोपयोग वाले के होगा, आगे कहेंगे जागृत वाले के होगा, नींद में भी नहीं होगा। यह बतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया गया है। सुप्त अवस्था में उत्कृष्ट अनुभाग का बंधन नहीं होता, किंतु जागृत अवस्था में ही होता है, यह बतलाने के लिए जागार पद का निर्देश किया है। मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम के भेद से छह संकलेश स्थानों में से, देखो संकलेश स्थान भी उन्होंने भी छह बताए, मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, इनमें से छठे संकलेश स्थान में वह उत्कृष्ट अनुभाग बंधता है, तीव्र तमलिया उसको बताया नहीं है, वो किस संकलित थे ना, उत्कृष्ट संकलेश बताया उसको, यह बतलाने के लिए उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त ऐसा कहा गया है। वह एक प्रकार का नहीं है क्योंकि यहाँ आदेश उत्कृष्ट और ओघ उत्कृष्ट इन दोनों का ही ग्रहण है।
ओघ उत्कृष्ट भी एक प्रकार का नहीं बताया।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये कौन सा उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाला जीव है, तो उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाला जो उत्कृष्ट संकलेश वाला है, परंतु एक उसका संकलेश कम वाला जीव भी वो उत्कृष्ट बांध सकता है। हमने देखा ना जैसे स्थिति बंध के उत्कृष्ट स्थिति बंध बांधने वाले जो परिणाम है, जिसको हम स्थिति बंध अध्यवसान स्थान कहे थे, उसमें भी असंख्यात लोग उतना ही स्थिति बांध सकते हैं। इसमें भी कुछ विशिष्ट जो अलग अलग परिणाम है उनसे इतना अनुभाग बन सकता है, तो अकेला उत्कृष्ट संकलेश नहीं, कुछ अनुत्कृष्ट जो है उसको भी उसमें इंक्लूड कर दिए। इसको वो उत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट दोनों ही सी बात बताई उसमें। सूत्र में आया हुआ नियमापद, नियम से बताए ना, चूंकि मध्य दीपक है, मध्य दीपक ने सूत्र में जो जो बातें बताई है, देखो निकालो सूत्र निकालो, यहाँ बताए देखो सागर वगैरह जागरण नियमा और फिर उत्कृष्ट संकलित ने बंदल लयम, ये नियमा शब्द दोनों ओर लागू होता है। कौन सा नियम, पंचेंद्रिय वो नियम है, संज्ञेय वो नियम है, मिथ्या दृष्टि वो नियम है, सब पर्याप्ति से पर्याप्त ये सब नियम, और आगे वाला उत्कृष्ट संकलेश वो भी नियम, यानी नियम पद सभी विशेषणों को लागू होता है। ये कह रहे नियमा पद चूंकि मध्य दीपक है, अतः नियम से पंचेंद्रिय, नियम से संज्ञेय एवं मिथ्या दृष्टि, नियम से सब पर्याप्तियों द्वारा पर्याप्त अवस्था को प्राप्त, नियम से साकार उपयोग से संयुक्त, नियम से जागृत, नियम से सब पर्याप्तियों के द्वारा पर्याप्त अवस्था, नहीं नहीं दो वाक्य रह गए, मिथ्या दृष्टि के बाद कॉमा लगा लो, फिर लिखना नियम से, नीचे लिखो फुटनोट में दो वाक्य लिखने, नियम से सब पर्याप्तियों द्वारा, नए पुस्तक में ऐड करो, प्रेरणा बन के होगा ना अभी है, हाँ आपकी पुरानी है ना, अच्छा
नहीं।
ये लक्ष्मी के पास, मनीषा के पास और आपके पास है, ठीक है। नियम से कहाँ गया, सब पर्याप्तियों द्वारा पर्याप्त अवस्था को प्राप्त, कॉमा फिर लिखो, नियम से साकार उपयोग से संयुक्त। अब जागृत वाली बात है क्या आगे, हाँ आगे लिखते हैं, आगे है वहां पर नियम से, हाँ संयुक्त कॉमा, आगे की बात है आप में, नियम से जागृत तथा नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त ऐसा कहना चाहिए। ये नियम से शब्द सब जगह लगा लो, उपर्युक्त विशेषणों से संयुक्त जीव के द्वारा, कौन कौन से विशेषण, कि वो पंचेंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि है, पूजा, ये सब सब विशेषण है। ऐसा जो कोई भी जीव है, कोई भी जीव कहने से किसी भी गति वाला हो, किसी भी अवगाहना वाला, कौन सा भी वेद वाला हो, ये सब उसमें आ गए, तो उपर्युक्त विशेषणों से संयुक्त जीव के द्वारा बांधे गए उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व जिस जीव के होता है, यानी बंध के समय तो उतना उत्कृष्ट बंध है तो वहां तो सत्व है ही है, उसके ज्ञानावरणीय वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। तो ऐसा सत्व किसके होगा? कौन से युग के? पंचेंद्रिय के होगा, के केंद्रिय के भी होगा, और वो मरकर गया एक इंद्रिय में, तो
उत्कृष्ट बंद नहीं होगा ना?
उत्कृष्ट बंद करके जाए, हम सत्व पूछ रहे,
सत्व सत्व हो सकता है
वो बांध कर जहाँ जाएगा उसका सत्व। हाँ, जब तक वो सत्व घटा नहीं है तब तक, हाँ, वो सत्व उतना ही रहते हुए अगर गया है तो उसका हो सकता है, अभी वही पूछ रहे हैं। हाँ, बस बांधने वो तो नियम से, नियम से उसके तो है ही है, जिस समय बंद है वो सत्व तो है ही है, और भी किसके होता है वो पूछेंगे अभी। देखो, उसका सत्व इसके होता है यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र आया है। देखो पहले में, पहले यहाँ क्या कहा उन्होंने सूत्र में, बंधलयम जस्सतम सत्तकम्ममत्ति, जिसके द्वारा बंध होता है और जिस जीव के इसका सत्व होता है। पहले में पहले बंध बांधने वाला ये है, और जिसके उतना सत्व होता है, यानी संगी पंचेंद्रिय बांधा है और जिसको यह सत्व होता है, तो बांधने हुए की तो कंडीशन बता दिए, अब जिसके सत्व होता है वो भी बताएंगे। यानी वो आधा ही सूत्र हुआ है। देखो ऊपर के, देखो सूत्र देखो, हम वहां क्या लिखा है, नियमा वगैरह वगैरह ना, बंधलयम जस्स तम संतकम्ममत्थी। अब उसके बाद ये जो सूत्र पढ़ेंगे नौवा, तम यानी ऊपर की प्राकृत भाषा देखो, प्राकृत में तम संतकम्मम इदस्स होदी ती जानावन ठम, यानी जानने वाले के लिए उत्तर सुत्तम आगदम, यानी वो सत्व किसके होता है, इसके इसके होता है ये बतलाने के लिए उत्तर सूत्र आया है। पहले पहले बांधता कौन है वो बताया, और इतना ही सत्व और किसके होता है वो इस सूत्र में बताएंगे। तो कहते तम ए इंद्रियस्य वा बी इंद्रियस्य वा ती इंद्रियस्य वा चौर इंद्रियस्य वा पंचेन्द्रियस्य वा सन्निस्य वा असन्निस्य वा बादरस्य वा सुहमस्य वा पज्जतस्य वा अपज्जतस्य वा अन्नदरस्य जीवस्य अन्नदवीयाय गदीये वट्टमानस्य तस्य नानावर्णीय वेण भावदो उक्कस्य। बांधने वाला ये जीव है, अब वो कहाँ कहाँ जाता है उस उतने ही सत्व के साथ वो बता रहे हैं। देखो उसका सत्व, सत्व की बात है, पहले बंधने की बात थी, किसको बनता है वो बताया। उसका सत्व एकेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय अथवा तीन्द्रिय अथवा अथवा हुआ है अथवा चतुरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय अथवा संगी अथवा असंगी अथवा बादर अथवा सूक्ष्म, क्योंकि एक इंद्रिय को भी लिया ना, तो बादर को भी लिया सूक्ष्म को भी लिया, अथवा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त अन्यतर जीव के, यानी ये कोई भी उसमें हो सकते भेद प्रभेद, अन्यतम गति में विद्यमान होने पर होता है, किसी भी गति में, कोई भी बांध कर कोई अन्य गति में गया तो उसके भी हो सकता है। अतएव उक्त जीव के ज्ञानावरणीय की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। वह सत्कर्म सूत्र में कही गई एकेंद्रिय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक, क्योंकि सभी विकल्प बताए ना उन्होंने, सब अवस्था विशेषों में पाया जाता है। अब शंकाकार पूछते हैं, अन्यत्र बांधे गए उत्कृष्ट अनुभाग की दूसरी जगह संभावना कैसे हो सकती है? पंचेंद्रिय वो एकेंद्रिय में जाने पर उसका उत्कृष्ट अनुभाग कैसे रह सकता है, ये उनका प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग को बांध कर उसका कांडक घात किए बिना अंतर्मूर्त काल के भीतर एकेंद्रियादिकों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व पाया जाता है। यानी बांधने के बाद उसका जो कांडक होता है अनुभाग का, वो अनुत्कृष्ट हो जाता है, परंतु उसके पहले वो मरकर अन्य गति में गया तो उसका सत्व उतना का उतना रहता है, इसलिए अंतर्मूर्त काल तक ये संभव है।
या तो ऊपर ये दृष्टिलैंग में अपर्याप्त अवस्था तक, तो वो कांडक घात अपर्याप्त की पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही चालू हो जाता है, ऐसा बताया?
जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपर्याप्त पर्याप्त सब कुछ ले लिए,
अपर्याप्त अवस्था तक।
हाँ, ये अंतर्मूर्त
तक बताया, इसीलिए मैंने पूछा।
तक का अर्थ होता है एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त तक। ऊपर के सूत्र में जो गिना है उसके तक लगाना।
अपर्याप्त जीव को भी
समझ में आई ना बात? अनुत्कृष्ट हो जाता है, अनुभाग घट जाता है। यानी बांधते समय तो उसने कंडीशन सब लगा लिए, परंतु वो बांधने के बाद अंतर्मूर्त में वो मरण नहीं भी हुआ तो भी कट होगा, परंतु जब बंध के मैक्सिमम बांधा है तो अंतर्मूर्त में वो हीन हो जाता है। अब उसके पहले ही वो मर, हाँ उसके भी हो गए, क्योंकि क्या है कि अंतर्मूर्त में हो जाएंगे, क्योंकि उतना का उतना तो बांधता नहीं रहेगा, जो है वो तो घटने घटेगा थोड़ा। और वैसे एक इंद्रिय आदि में पर्याप्त में गया तो घटेगा ही घटेगा। बांधा तो तभी तो ताबड़तोप उदय में तो नहीं आएगा। हाँ हाँ, अभी उसके बारे में बताएंगे।
एक क्वेश्चन होता है ना कि पांच इंद्रिय का ज्ञान तो पंचेंद्रिय को होता है, पांच इंद्रिय
पंचेंद्रिय
को वो पांच इंद्रिय का ज्ञान होता है, और एक इंद्रिय को एक ही इंद्रिय का ज्ञान,
एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान।
तो वहाँ पे उत्कृष्ट नहीं बताया, पंचेंद्रिय को बताया, और वो एक इंद्रिय में जाएगा तो अंतर्मूर्त तक ही उसका उत्कृष्ट ज्ञानावरण होता है।
सत्व की बात अलग है, उदय की बात अलग है।
नहीं, पर उदय की अपेक्षा एक इंद्रिय में कम ज्ञान है कि पंचेंद्रिय में कम ज्ञान?
आप ही बताओ।
एक इंद्रिय में तो वहाँ पे तो उत्कृष्ट अनुभव का उदय हो रहा है ना,
उसके योग्य हो रहा है। उसके सत्ता कितनी है वो पूछ रहे, सत्ता किसके पाई जाती है ये बात हो रही है। एक इंद्रिय में बांध कर भी एक इंद्रिय में जा सकता है कि नहीं जा सकता?
तो प्रति इंद्रिय ज्ञान का उदय अलग अलग लेना है कि नहीं?
देखो, अनुभाग का उदय बात अलग है और यहाँ अनुभाग का सत्व बात अलग हो रही है। वो एक इंद्रिय के योग्य वहां तो उसके ही उदय चलेगे, उसमें भी एक इंद्रियों में रहते हुए भी उसके कांडक घात होते चले जाएंगे। वो हत हत समुत्पत्ति सब जय धोला में वगैरह देखे थे, वैसे होगी उसमें। हाँ, आपका ये प्रश्न है, जैसे संगी पंचेंद्रिय की कंडीशन बताई उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाला, तो ऐसी वो एक इंद्रिय क्यों नहीं बांध सकती, ये आपका प्रश्न है। उनके योग्य बांधते हैं पर उसको सबसे उत्कृष्ट नहीं कहेंगे। उनके योग्य, जैसे हमने स्थिति के भेद देखे थे, आपको याद है संगी पंचेंद्रिय कितना अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरण की बात 30 कोड़ा कोड़ी तक बांधता है। अब असंगी की अपनी रेंज ऊपर की संख्या त्रिभाव को 1000 सागर के रेंज में, यानी 1000 का भी 3 सप्तमांश लेंगे, चतुर इंद्री के 3 इंद्री, उसके हर एक की अपनी अपनी रेंज जुदी जुदी है, ख्याल में आती है ना? ऐसे अनुभाग में भी समझना, अभी अशुभ कर्म है तो उसका भी तीव्र अनुभाग जो है मैक्सिमम वो कौन बांधेगा? संगी पंचेंद्रिय बांधेगा, उत्कृष्ट संकलेश में बांधेगा। ख्याल में आएगा? उनका पंजा एक इंद्रियों को क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बांधते हैं उत्कृष्ट अनुभाग? उनका प्रश्न क्या है पूछ रहे? उनका प्रश्न जो है एक इंद्रिय क्यों नहीं बांधते, तो उनकी अपनी संकलेश इतने नहीं होते तो इतने नहीं बांधते। एक इंद्रियों में संकलेश और विशुद्धि की जो रेंज है वो कम है, जैसे स्थिति के भेद हमने देखे थे। हाँ, वो तो द्विस्थान, यानी वो साता असाता का द्विस्थान गत बांधते हैं, वो तो बात हमने देखी थी ना, असंगी तक तो द्विस्थान गत ही बांधते हैं, वो तो साता में ही घटित किया था उन्होंने, ऐसे सब में लगाने, यानी उसके ना अति संकलेश होते हैं ना अति विशुद्धि होती है, अति यानी पंचेंद्रिय के योग्य भी नहीं होती। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, यानी वो उत्कृष्ट अनुभाग बांधकर उसके बाद कांडक घात किए बिना एक इंद्रियों में गया है, क्योंकि एक इंद्रियों में जाने पर उसके कांडक घात वगैरह होते रहते, वो एक इंद्रिय के योग्य अनुभाग होते होते वो घटते चला जाएगा।
तभी जीव पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय में जाता है तभी स्थिति कांडक घात होता है, वहाँ पे अनुभाग कांडक घात,
स्थिति कांडक घात भी इमीडिएट एक समय में नहीं होगा,
अंतर्मुख पश्चात होते
होगा, क्योंकि उसमें भी देव में उत्कृष्ट स्थिति बांध कर जो नेक्स्ट समय में एक इंद्रिय में जा सकता है उसका वहाँ स्थिति उत्कृष्ट स्थिति कितने, एक समय कम 30 कोड़ा कोड़ी या 70 कोड़ा कोड़ी, मोहिनी की 70 और ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी,
तब
उसके में पल्ले का असंख्या तो घटता चला जाता है, उसके भी अंतर्मुख होगा ना, यही तो कहते हैं कांडक घात किए बिना, यानी उसके पहले उसका सत्व कितना होगा, जब तक कांडक घात नहीं हुआ है, कांडक घात शुरू भी हो जाएगा तो एक कांडक का घात होने के लिए अंतर्मुख तो लगेगा ही लगेगा, समझ में आते ना, उसके एक फाली दूसरी फाली तीसरी फाली अनुभाग घटना चालू हो गया, उसमें लिए जब तक अंतिम फाली नहीं खेलती तब तक उतना सत्व तो पाया जाएगा, यही कहना चाहते। फिर से पढ़ती, उत्कृष्ट अनुभाग को बांध कर उसका कांडक घात किए बिना अंतर्मूर्त काल के भीतर एकेंद्रियों दिकों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व पाया जाता है, इस प्रकार इन अवस्था विशेषों में वर्तमान, यानी अभी हमने एकेंद्रिय द्विंद्रिय वगैरह भेद देखे, पर्याप्त अपर्याप्त देखे, बादर सूक्ष्म देखे, इनमें वर्तमान जीव के यानी इनमें विद्यमान जीव के यानी इन अवस्थाओं में जो जीव है उनके ज्ञानावरणीय वेदना भाव से उत्कृष्ट होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, यानी उनके भी उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता में पाया जाता है, बस इतना ही कहना है। शंका, यहाँ उपसंहार का कथन क्यों नहीं करते हैं, उपसंहार ने उसका प्रमाण क्यों नहीं बता रहे यहाँ पर, पहले उपसंहार का अर्थ हमने देखा उसका कुछ गणित बताया था, तो कहते उसमें क्यों नहीं बता रहे हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जो शिष्य स्थान, स्थान ने अनुभाग स्थान, स्पर्धक वर्गणा और अविभाग प्रतिच्छेद के विषय में निपुण नहीं है, उसे उपसंहारक कथन करने पर व्यामोह न हो, इस कारण यहाँ उपसंहारक कथन नहीं किया है। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ उसका एग्जैक्ट प्रमाण नहीं बताया है, क्योंकि शिष्यों को भी स्थान अनुभाग का स्थान क्या होता है, उसमें स्पर्धक क्या है, वर्गणा क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद क्या है, उसमें उसको वो निपुण नहीं है, उसके बारे में वो अधिक डिटेल्स नहीं जानता है, इसलिए कहते हैं यही उसका अगर हम कथन करते तो व्यामोह न हो, व्यामोह है ने वो तो व्यामोह होता है ना, उसके बारे में अरुचि भी पैदा हो जाती है, ये समझ में नहीं आता है, क्लिष्ट लगता है, कंफ्यूजन होता है, इस कारण यहाँ उपसंहार कथन यहाँ नहीं किया, आगे चलकर शायद कर देंगे, बाकी बाद में तो चुलिका आने वाली है, ये सबका कथन करने वाले, मुझे तो लगता है पहले चुलिका पढ़कर इसको पढ़ना चाहिए। फिर ऐसा करो अभी चुलिका घर में पढ़ के आओ तो समझ गए। अब कहते तब अविरतम अनुकस्सा, जो उत्कृष्ट नहीं वो सब क्या है, अनुत्कृष्ट है, उससे भिन्न अनुत्कृष्ट भाव वेदना होती है, उससे अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग से भिन्न जो वेदना है यानी जिसमें उत्कृष्ट अनुभाग नहीं वो सब क्या है, तद व्यतिरिक्त कहलाती है, और वह अनुत्कृष्ट भाव वेदना है, जो उत्कृष्ट नहीं उसको क्या कहेंगे, अनुत्कृष्ट कहेंगे। शंका, यहाँ अनुत्कृष्ट स्थानों की पृथक पृथक प्ररूपणा क्यों नहीं करते, यानी जैसे अभी स्थिति के भेदों में हमने देखा था ना, उत्कृष्ट थी एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, इस तरह से क्षेत्र में भी देखा था, एक एक प्रदेश वो मारणांतिक किया था, फिर उसने वो एक एक प्रदेश कम ऐसा सभी बताए थे विकल्प उसके, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। समाधान, नहीं क्योंकि आगे अनुभाग चुलिका में बताए ना, चलिए अनुभाग स्थानों का कथन करेंगे ही, फिर भी यहाँ उनका कथन करने पर चूंकि पुनरुक्त दोष होता है अतः उनका कथन नहीं किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ बात बताइए, फिर आगे चलकर उसके विशेषत विस्तार से बताएंगे। अनुभाग की बात, भाव में अनुभाग, क्योंकि कर्मों का भाव है तो कर्मों का अनुभाग है, और उसमें वो कर्मों का अनुभाग भी जीव के परिणाम, वो तो बात अलग है। बांधने वाले जीव के, देखो अनुभाग को बंद करने वाले जीव के परिणाम कारणभूत है। जैसे उन्होंने स्थिति बंध के स्थानों में स्थिति बंधाध्यवसान स्थानों का भी जिक्र किया था, वैसे अनुभाग जो बंध रहे है उसमें अनुभाग बंध के योग्य जो परिणाम, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, उसकी भी चर्चा शायद करेंगे। तो उसमें भी और सूक्ष्मता आएगी, जैसे एक एक स्थिति के भेद, उसके जो स्थान जो जीव के परिणाम उनमें भी भेद किए थे, वैसे इसमें भी है। हाँ देखो आगे इसी प्रकार की बात, एवं दंशनावरणीय मोहनीय अंतरायणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय के विषय में प्ररूपणा करनी चाहिए। ये अकेले तीन घातियों को क्यों लिया?
ये सभी अप्रशस्त,
सभी अप्रशस्त है, क्योंकि अघाती में दो दो हो गए, प्रशस्त अप्रशस्त, और उत्कृष्ट अनुभाग तो वहां क्षपक श्रेणी में बताएंगे प्रशस्तों का, इसलिए यहाँ तीन की बात की। देखो जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के स्वामी की प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार शेष तीन अघातिया कर्मों की प्ररूपणा, सॉरी तीन घातिया कर्मों की प्ररूपणा करनी चाहिए। पहले किसकी बताई? ज्ञानावरणी की। ऐसे ही दर्शनावरण में भी, मोहनीय में भी और अंतराय में भी समझना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी वो भी संगी पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, सब सब कंडीशन उसके लिए भी ऐसे ही लागू हो गए। अब यहीं रुकते हम, हो गए ना। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।